यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 নিত্য গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল গৌরা হরি বল নিত্য গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল গৌরা হরি বল দাই গৌর প্রেমানন্দে শ্রীহরি নাম সংকীর্তন যজ্ঞ কি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি ব্রজভূমি শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কি শিল প্রভুপাদ কি সমবেত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি দাই গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ আজ কে প্রাত সময় হম শ্রীমদ ভাগবতম কে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় তো আজ হম শ্রীমদ ভাগবতম কে তৃতীয় স্কন্ধ কে 21 অধ্যায় জিসকা শীর্ষক হ্যা মনু কর্দমা সংবাদ শ্লোক ক্রমাঙ্ক 48 কে উপর হম চর্চা করনে যা রহে হ্যাঁ শ্লোক ইস প্রকার সে হ্যাঁ অথোটজম উপায়াতম অথোটজম উপায়াতম নৃদেবম প্রণতম পুরহ নৃদেবম প্রণতম পুরহ সপর্যয়া পর্যগুহনাত সপর্যয়া পর্যগ্রহণাত প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া অথোটজম উপায়াতম নৃদেবম প্রণতম পুরহ সপর্যয়া পর্যগ্রহণাত প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া অথোটজম উপায়াতম নৃদেবম প্রণতম পুরহ সপর্যয়া পর্যগ্রহণাত প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া অথোটজম উপায়াতম নৃদেবম প্রণতম পুরহ সপর্যয়া পর্যগ্রহণাত প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া অথোটজম উপায়াতম নৃদেবম প্রণতম পুরহ सपर्यया पर्यग्रहणात् प्रतिनन्द्यानुरूपया अथोटजम् उपायातम् नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यग्रहणात् प्रतिनन्द्यानुरूपया माता है अथोटजम् उपायातम् नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृहणात् नन्दानुरूपया प्रतिनन्दानुरूपया अथोटजम् उपायातम् नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृहणात् प्रतिनन्दानुरूपया शब्दार्थ इस प्रकार से है अथ तब उटजम कुटी आश्रम उपायातम पहुंचकर नृदेवम राजा प्रणतम नतमस्तक पुरह सामने सपर्यया आदर से पर्यग्रहणात् उसका स्वागत किया प्रतिनंद्य सत्कार करके अनुरूपया राजा के योग्य अनुवाद और तात्पर्य शिला भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की अनुवाद राजा को अपने आश्रम के आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और सम्मान सहित उसका स्वागत किया तात्पर्य सम्राट स्वयंभुव मनु न केवल कर्दमा मुनि की पर्णशाला के निकट गए वरन उन्हें सादर नमस्कार भी किया इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे हिंदी में थोड़ा अलग लगता है इंग्लिश में थोड़ा अलग पड़ता एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है एनीवे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि कितने भगवान प्रसन्न होंगे ये देखकर कि सभी भक्त बड़े प्रामाणिकता से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, सभी आचार्यों को भगवान के भक्तों को कृपा याचना कर रहे कि हे प्रभु आप कृपया हमें शक्ति दीजिए आपकी सेवा करने के लिए। तो जब भगवान देख रहे होंगे हम सब साथ में प्रार्थना कर रहे तो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ही मस्ट बी वेरी हैप्पी टू सी, क्योंकि भगवान को यही आनंद देता है जब वो देखते हैं कि उनके भूले भटके हुए पुत्र या पुत्रिया फिर से उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं इस प्रकार से। आज का जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें प्राप्त हो रही है। हालांकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोई विशेष रूप से कोई शिक्षा नहीं दी है ना? आप यदि मैं फिर से अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ क्योंकि तीन ही पंक्तियां है, एक पंक्ति अनुवाद है और दो पंक्तियां तात्पर्य है। उसको पढ़ने के बाद लगेगा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या शिक्षा दी है हमें। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और सम्मान सहित उसका स्वागत किया। तो जो हो रहा है, क्योंकि मुनि अपनी पर्ण कुटीर में बैठे हुए हैं, वहां पे यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस में अग्नि में आहुति डाल रहे, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और वहां पे स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के साथ आए हुए हैं। तो आने के बाद क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, कहते हैं सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दमा मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्हें सादर नमस्कार भी किया। तो उन्होंने प्रणाम किया, वो कुटिया के पास गए और उनको प्रणाम किया। और मुनि ने तत्पश्चात क्या किया, इसी प्रकार मुनि का धर्म है कि जंगल में जब कोई भी राजा आते हैं उनके कुटिया के पास, तो उनको आशीर्वाद देना, उनके लिए अच्छी कामना करना, बस इतना ही है। प्रभुपाद जी ने उसी जो हुआ है उसी के बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। लेकिन इस छोटे से प्रसंग से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति भगवान के भक्त हैं, कर्दमा मुनि और स्वयंभू मनु दोनों भक्त हैं। तो जब कोई भक्त किसी प्रकार के कार्य करते हैं तो उसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए स्वयंभू मनु वो राजा है, कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है, वो साधारण राजा नहीं है। स्वयंभू मनु ये सारे मनुष्य के लिए जो धर्म होते हैं, मनु संहिता, उसकी रचना करते हैं। और उतना ही नहीं, वो इस पृथ्वी लोक ही नहीं ऊपर वाले लोकों में रहते हैं और वहां पे उनका राज है। तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि स्वयंभू मनु के पास कितना ऐश्वर्य है, कितनी संपत्ति है और कितनी प्रतिभा है उनके पास, नाम है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो जंगल में एक बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो एकदम गरीब, जिसकी कुटिया भी सूखे हुए पत्तों से बनी हुई है, ऐसे व्यक्ति के घर में गए हैं और वहां जाकर क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए झुकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे बड़े होने का गर्व होता है, उसे लगता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कैसे किसी के सामने ऐसे झुक जाऊं। लेकिन स्वयंभू मनु यहां झुक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है स्वयंभू मनु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये स्वयं अपने आचरण से दिखा रहे हैं। स्वयंभू मनु के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐश्वर्य जो उनके पास है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो भगवान के निकट है। उनके हृदय में उस व्यक्ति के लिए आदर है जो भगवान के निकट है, उस व्यक्ति को वो पूरा सम्मान देना चाहते हैं या देने में बहुत आनंद महसूस करते हैं। तो स्वयंभू मनु स्वयं दिखा रहे अपने आचरण से कि आजकल मतलब उनके दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। लेकिन आजकल की दुनिया में बिल्कुल उल्टा है, आजकल की दुनिया में बाहरीपन को ज्यादा महत्व है। किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान देने का जो उनका उद्देश्य होता है वो इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूं, ना, उसके पास पैसा है इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूं, और सम्मान करने के बाद मेरी अपेक्षा है कुछ मुझे भी मिल जाए उससे पैसे। तो बहुत ही कटुता का या बहुत ही छोटेपन का स्वभाव है उसमें, ना? दूसरे का लेने का भाव है उसमें, हृदय में कोई सम्मान नहीं है, बस वो बाहरी दिखावा है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिलेगा उससे।
लेकिन स्कर्धा यहाँ पे स्वयंभू मनु को क्या मिलने वाला है, बल्कि तो वो अपनी इकलौती पुत्री को पता नहीं, इकलौती तो नहीं होगी, इकलौती है नहीं ना, हाँ तो अपनी पुत्री को वो लेके आए हैं देने के लिए, विवाह करने के लिए उसके वो आए हैं। तो स्वयंभू मनु अपने आचरण से यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि जो भक्त होते हैं या वैष्णव होते हैं वो किस चीज को महत्व देते हैं, किस कारण से उनके हृदय में सम्मान की भावना होती है। किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यता भगवान के भक्तों को आकर्षित नहीं करती। भगवान के भक्तों को यदि कोई चीज आकर्षित करती है तो भगवान की भक्ति ही है। जब वो देखते हैं किसी भक्त के अंदर भगवान की भक्ति है, स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में उस भक्त के प्रति आदर का भाव आ जाता है। लेकिन जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के भक्ति नहीं है या उसका स्वभाव वैष्णव जैसा नहीं है, तो फिर उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं अनुभव होती, उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती हृदय के अंदर कि इन भक्त के साथ मैं रहूं। तो स्वयंभू मनु यह अपने स्वयं के आचरण से दिखा रहे हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो अनमोल धन है, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम, वो है इनके पास, वो सबसे ज्यादा कीमती है। उसके सामने कोई भी किसी भी प्रकार की अचीवमेंट, किसी भी प्रकार की प्राप्ति भौतिक स्तर पे बिल्कुल उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, तुलना ही नहीं कर सकते। किसी को स्वर्ग का राजा भी का पद मिले या किसी को मुक्ति भी क्यों ना मिले, फिर भी भगवान के भक्ति के प्राप्ति के सामने एकदम तुच्छ माना जाता है, नगण्य माना जाता है, उसको भक्त लोग तो देखना ही नहीं चाहते। कैवल्यम नरकायते, और स्वर्ग के सुख को वो आकाश पुष्पायते, आकाश में जैसे पुष्प होते हैं ना उस प्रकार से समझते हैं, आकाश में पुष्प होते नहीं कभी, तो इस प्रकार से वो देखते हैं उन चीजों को। तो यदि भगवान का कोई भक्त है तो जरूर भक्ति से आकर्षित होगा, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है वो स्वाभाव साधारण व्यक्तियों को क्या, वो साक्षात भगवान को आकर्षित करती है, ये भक्ति का गुण है, सर्व आकर्षणीय भक्ति लक्षण है भाव भक्ति के, कि भगवान भी ऐसे भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, तो हम जैसे छोटे से जीवात्माओं की क्या बात है, हम तो जरूर आकर्षित होंगे जब किसी के अंदर भक्ति हम देखते हैं, किसी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुण, वैष्णवों के गुण हम जब देखते हैं। यहाँ पे राजा कितनी विनम्रता दिखा रहे, नम्रता दिखा रहे कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा मुकुट है, पता नहीं कितने करोड़ों का होगा, स्वयंभू मनु है, कोई पृथ्वी के राजा नहीं है वो, इतना बड़ा मुकुट होगा, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कितनी नम्रता है, अपने आप को नतमस्तक कर रहे, झुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा धन है, ये भगवान के भक्त है, भगवान की भक्ति है इनके हृदय में, तो इसलिए वो नतमस्तक हो रहे हैं। और बदले में देखिए कर्दमा मुनि, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके हृदय में राजा के प्रति वेल विश है, मतलब अच्छी इच्छा वो प्रकट कर रहे हैं अपने हृदय में कि इस राजा का भला हो। ये भक्त का लक्षण है, भक्त का हमेशा हृदय भरा होता है दूसरों का अच्छा हो इस भावना से, ये भक्त का लक्षण है। यदि भक्त किसी दूसरे का बुरा चाहते हैं तो फिर वो भक्त का है के, वो तो भक्त नहीं हुए फिर। लेकिन भक्त का स्वभाव है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई इच्छा करते हैं, कि ये अच्छी तरह भक्ति में आगे बढ़े, इनकी उन्नति हो, उनके साथ अच्छा हो, उनको भगवान की कृपा मिले, उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिले, इस प्रकार के भाव होते हैं भक्त के हृदय में। तो कर्दमा मुनि यहां स्वयं दिखा रहे अपने आचरण से कि कैसे उनका हृदय भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी के रूप में कहते हैं कि मुझे विषयी के पास जाना नहीं है। जब सारे भक्त लोग स्वरूप दामोदर तक, जो पर्सनल सेक्रेटरी है चैतन्य महाप्रभु के, वो विनती कर रहे थे कि ये राजा जो है प्रताप रुद्र महाराज ये बहुत अच्छे हैं, भक्त है, जगन्नाथ जी के सेवक है, आप कृपया उनसे मिलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को अपने राजमहल में बुला रहे थे कि ये सन्यासी मेरे पास आओ मिलने के लिए, ना, वो स्वयं आना चाहते थे मिलने के लिए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, ये तो विषय ही है, राजा है, इसका संबंध पैसे से और स्त्री से है, मैं क्यों जाऊंगा मिलने के लिए, ना, मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतना दिखाते हैं स्ट्रांगली, अपने आचरण से बताते हैं कि कैसे मैं भौतिकवादी व्यक्ति का बिल्कुल संग नहीं करना चाहता। तो महाप्रभु सिखाते हैं, कितनी बार महाप्रभु ने बताया है कि यदि कोई भौतिकवादी क्या दिया हुआ अन्न भी कोई स्वीकार करता है तो उसकी मति बुद्धि क्या हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, और यदि किसी की बुद्धि मन दुष्ट हो जाता है, कलुषित हो जाता है, वो कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है। कहते मन दुष्ट है ले न है कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मृति विनु हय निष्फल जीवन। कहते हैं कि कृष्ण के स्मृति के बिना व्यक्ति का जीवन क्या जीवन है, वो तो निष्फल है, बेकार है, बोझा है। जैसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी, मृत शरीर को सजाया जा रहा है, क्या फायदा है, कुछ नहीं, जितना भी सजावट करेंगे वो सारी वेस्ट है। मृत शरीर को सजाना, भागवतम बड़े एकदम एकदम ऐसे दिल में हृदय में घुस जाए इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, एनालॉजीज देते हैं। श्रीमद् भागवतम की ये सुंदरता है। तो भगवान के भक्त इसीलिए दुष्टता को, कटुता को अपने मन में या हृदय में नहीं रखना चाहते। तो महाप्रभु दिखाते हैं कि नहीं, मैं तो राजा का संग नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे कर्दमा मुनि क्या कर रहे हैं, आदर दिखा रहे, स्वागत कर रहे राजा का। क्योंकि ये राजा साधारण राजा नहीं है। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु बाद में प्रताप रुद्र महाराज को कृपा देते हैं, कब, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तब देखते हैं कि राजा स्वयं आया है अपने हाथ में झाड़ू लेकर, जगन्नाथ जी का रथ बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होने के पहले स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर राजा रास्ते का मार्जन कर रहे थे। रास्ते का मार्जन, साफ सफाई भंगी लोग करते हैं, जो गंदगी के साथ रहते हैं हमेशा, जिनको स्वच्छता कुछ नहीं होती किसी भी प्रकार की, तो वो ऐसे लोग ये कार्य करते हैं, रस्तों को साफ करना, गंदगी को साफ करना, और उस राजा वो स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, अरे ये स्वयं जगन्नाथ जी के सामने इतना छोटा स्थान स्वीकार करने के लिए बड़े उत्साहित है, सबके सामने आकर झाड़ू लेकर वो झाड़ू मार रहे, कितनी नम्रता है। तो वो जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसी समय निर्णय लेते हैं कि मैं जरूर इस राजा को अपनी कृपा दूंगा, नहीं तो तब तक चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मना ही कर रहे थे कि मैं मिलूंगा ही नहीं, आप सब लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं चला जाता हूं अलारनाथ, मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा ही नहीं। तो सारे डर गए भक्त लोग कि अरे चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे। तो ये कर्दमा मुनि हालांकि पर्णकुटी में रह रहे, लेकिन उन्हें भी पता है कि किसके हो आदर देना चाहिए, किस व्यक्ति का संग करना चाहिए। तो वो स्वयंभू मनु हालांकि राजा है, फिर भी क्योंकि वो भगवान के भक्त है इसीलिए उनके मन में इतना आदर है उनके लिए, और उनके लिए इतनी सुंदर सुंदर इच्छाएं वो प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनके ऊपर आप कृपा कीजिए। क्योंकि साधु जब कोई आशीर्वाद देते हैं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, ये भाव नहीं रहता उनका। उनका भाव रहता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मैं जरूर भगवान को प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आप कृपया इनके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। तो ये भाव होता है भक्तों का, वैष्णवों का। तो यहां पर हम आचरण से सीख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यहां पे हमें कोई सीधी सीधी बात नहीं बताई है, लेकिन दिखाया है आचरण कैसे, जो भगवान के महान भक्त है वो कैसे आचरण करते हैं, कैसे उनके हृदय में दूसरों के प्रति हमेशा अच्छी इच्छा होती है, कभी दूसरों से द्वेष नहीं करते। जब चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अथक प्रयास के बाद सक्सेसफुली भागकर आ पाते हैं जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। मंडलपति जैसे बहुत ऐश्वर्य था रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, वो तो राजा के पुत्र थे, इतना ऐश्वर्य था उनके पास, लेकिन सब कुछ वो छोड़ देते हैं चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने के लिए। अब जब आते हैं जगन्नाथपुरी में तो बहुत सरल जीवन जीते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का मान नहीं रखते हो कि मैं बड़े राजा का पुत्र हूं, राजकुमार जैसा हूं, बड़ा ऐश्वर्यशाली हूं तो मुझे कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनके आचरण से एक एक तिनके मात्र का भी कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। इतनी उनके अंदर विनम्रता थी आचरण में, अपने आप को इतने नम्र भक्त समझते थे। जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास दे देते हैं, देखिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपका ख्याल करेंगे, तो स्वरूप रघु ऐसे करके भी उनका नाम हुआ था। तो फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मैंने अभी वैरागी जीवन जी रहा हूं, सन्यासी का जीवन जी रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए बताइए, ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने बताया, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन मैं दो तीन जो सुंदर सुंदर पंक्तियां उन्होंने बताई उसको पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाल ना करिबे और भाल ना परिबे, आमनी मान दाहन कृष्ण नाम सदा लबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे। वो कहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की ग्राम्य वार्ता में रुचि नहीं लेनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए, ना बोलनी भी चाहिए, कुछ नहीं। भाल ना खाइबे और भाल ना पोरीबे, और आपको बहुत सुंदर सुंदर एकदम अच्छी तरह बनाए हुए पकवानों को स्वादन नहीं करना चाहिए। आमनी मान दहन कृष्ण नाम सदा लबे, वो कहते हैं कभी भी मान की अपेक्षा मत रखना, अमानी मानदा, और हमेशा दूसरों को मान देना, सम्मान करना। कृष्ण नाम सदा लबे, और हमेशा भगवान कृष्ण का नाम लेना। व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस कोरिबे, और मन में व्रज में जो राधा कृष्ण स्थित है उनकी आप सेवा करना। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को कि कैसे एक वैरागी का जीवन होना चाहिए या एक भक्त का जीवन होना चाहिए। तो इसमें ये पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है जो आज के अनुवाद या आज के तात्पर्य से संबंधित है। अमानी मानदा हान, कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कर्दमा मुनि हो या स्वयंभू मनु हो, कोई भी अपने स्वयं के प्रति मान की इच्छा नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को मान देना चाहते हैं। ये आसान बात नहीं है इसको अपने जीवन में उतारना, बद्ध अवस्था में बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे कोई व्यक्ति मुझे मान दे, इसके पीछे व्यक्ति लालायित होता है, प्रयास में लगा रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों को लगे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और सब लोग मुझे मान सम्मान दे। तो इस प्रकार की भूख होती है बद्ध अवस्था में। लेकिन जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, मुझे कभी भी मान की अपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि मुझे दूसरों को सम्मान देना है। इसके लिए नम्रता का गुण आवश्यक है और नम्रता प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि नम्रता का दुश्मन जो गर्व है वो हमारे हृदय में पहाड़ की तरह भरा हुआ है। हिमालय का पहाड़ बहुत बड़ा होता है, पता नहीं हमारा शायद उससे भी बड़ा हो सकता है। गर्व हमारे हृदय में, बहुत गर्व भरा हुआ है हमारे अंदर। तो ऐसे गर्व के हृदय में कैसे व्यक्ति भगवान का नाम सदा ले सकता है, कैसे व्यक्ति भगवान का स्मरण हमेशा कर सकता है? संभव ही नहीं है, मुश्किल है। और दूसरी अवस्था ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति के हृदय में गर्व है, स्वयं को मान प्राप्त करने की इच्छा है, उस व्यक्ति के हृदय में द्वेष भी तुरंत पैदा हो जाता है, वो द्वेष करने लगता है। भक्ति में आने के बाद भी ये द्वेष भावना निकलती नहीं है जल्दी से, बहुत ऐसे कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जब हम आटा बनाते हैं, गेहूं के चावल के आटा रोटियां बनाने के लिए, तो कभी कभी पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो पानी ज्यादा होता है तो आप उसको जब मिलाने का प्रयास करते हो तो चिपक जाता है हाथ से, है ना। आटा, जिन्होंने आटा बनाया उनको ही समझ में आएगा ये उदाहरण ज्यादा। तो चिपक जाता है हाथ में, निकालना पड़ता है ऐसे खींच खींच के। उस प्रकार से द्वेष भावना चिपकी हुई है हमारे हृदय में, एकदम पकड़ रखी हुई है। जब गर्व होता है तो द्वेष भी साथ में होता है। और द्वेष किस प्रकार से प्रकट होता है? ये प्रकट होता है जब भी कोई भक्त की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाती है, तुरंत उसके हृदय में ऐसा विचार आता है कि ये व्यक्ति, ये भक्त है तो भक्त, कपड़े तो पहने हुए है भक्ति है, लेकिन ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा वैरी है। इस प्रकार की भावना आती है मन में, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार की भावनाएं आने लगती है। अलग अलग स्तर पे इंद्रिय तृप्ति होती है, अपने इंद्रियों के स्तर पे होती है इंद्रिय तृप्ति, या कभी मन के स्तर पे होती है इंद्रिय तृप्ति, कभी अहंकार के स्तर पे होती है, बुद्धि के स्तर पे होती है। तो हमें बहुत आसक्ति है इंद्रियों के प्रति तृप्ति करने के लिए, और जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें आड़े डालता है, जैसे ही कोई व्यक्ति मेरे मान सम्मान के सामने आ जाता है, रोड़े डाल देता है, तुरंत मेरे मन में क्या भाव आता है? ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किस प्रकार का वैष्णव है, किस प्रकार का भक्त है, मेरे प्रयास में वो रोड़े डाल रहा है, इस प्रकार का भाव आता है। तो जैसे ही हम इस प्रकार का विचलन या इस प्रकार का डिस्टर्बेंस देखेंगे हमारे हृदय में, हमें तुरंत हमारे हृदय में पता चल जाना चाहिए, हाँ जरूर कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति मेरी बाधा हो रही है, कोई ना कोई रोड़े डाल रहा है, इसीलिए मुझे डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, मुझे इतना तनाव, इतने मन में बुरे विचार आ रहे हैं भक्तों के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो जरूर जरूर किसी ना किसी प्रकार की मेरी इंद्रिय तृप्ति टूट रही है, इसीलिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ऐसे बुरे विचार आ रहे भक्तों के प्रति। एक्चुअली जब ऐसा होता है तो जो प्रामाणिक भक्त होते हैं वो तुरंत अपने हृदय में झांकने का प्रयास करते हैं, क्यों क्यों मेरे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं भक्तों के प्रति, भक्त तो बुरे होते नहीं, भक्तों के हृदय में किसी दूसरे का नुकसान करने की भावना तो होती नहीं है, तो क्यों क्यों मेरे हृदय में इस प्रकार का भाव आ रहा है, इस प्रकार से भक्त अपने हृदय में झांकने का प्रयास करते हैं, जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर की इंद्रिय तृप्ति मेरी रुक रही है। इसका मतलब मैं भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, मेरे भक्ति में जो उद्देश्य है वो सही तरीके के उद्देश्य नहीं है। मैं भगवान के सेवक बनने के बजाय शायद भगवान की तरह प्रभु बनने का प्रयास कर रहा हूं। तभी कोई मुझे प्रभु बनने नहीं देता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे मुश्किल हो जाती है, मन में मेरे अलग अलग प्रकार के बुरे विचार आते हैं उस भक्त के प्रति। तो ये इस प्रकार की बातें होती रहती है हमारे साथ, कम से कम मेरे साथ तो होती है। तो बहुत हमारे हृदय में एक गर्व और द्वेष भरा हुआ है, और इस गर्व और द्वेष के साथ ये अमानी मानदा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अमानी मेरा मान रखने का या मेरा मान मुझे मान प्राप्त करने की इच्छा है, तो ऐसी इच्छा है तो मैं किसी को मान कैसे दे सकूंगा, बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसा नहीं होगा तो अगली बात नहीं होगी, कृष्ण नाम सदा लबे, हमेशा मेरे जीवा से भगवान कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा, हमेशा मैं भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं कैसा भक्त हुआ, फिर किस प्रकार का भक्त हुआ फिर। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मन तुमी किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार बारे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कैतव। वो कहते हैं कि कैसा है तुम्हारा हरि नाम, क्यों, क्योंकि तुम निर्जन स्थान पे तो गए हो भजन करने के लिए, लेकिन देख रहे हो कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, कितने लोग मुझे आके प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं मेरा, उसके पीछे तुम्हारी दृष्टि है, तो तुम्हारा ये निर्जन भजन क्या फायदे का है। मार रहे हैं हमें जोर से भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, चाटा मार रहे कि किस प्रकार के भक्त हो तुम, दूसरों को मान देने की बजाय स्वयं मान की इच्छा रख रहे हो, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हो, जबकि भक्ति का मतलब है कि हमें भगवान को इंद्रिय तृप्ति देनी चाहिए, भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करनी चाहिए, ना कि मेरी खुद की इंद्रियों की तुष्टि करूं मैं। तो महान आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो या शिल प्रभुपाद जी हो या और भी कई अन्य गोस्वामी, सभी जो भगवान के महान भक्त है वो अपने आचरण से इसीलिए दिखाते हैं। कई बार लगता है मैंने दो चार प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ लिए, मुझे नॉलेज आ गई, तो मैं अभी प्रचारक बनना चाहता हूं, मैं प्रचार करूंगा, क्यों, मुझे नॉलेज पता चल गई है तो मैं जाके वो नॉलेज दूसरों को दूंगा जिनको नॉलेज पता नहीं है। तो हमें लगता है नॉलेज होना, ज्ञान होना ये योग्यता है प्रचारक बनने के लिए, लेकिन नहीं, ज्ञान होना जो शास्त्रों का सिर्फ ज्ञान जिसे कहते हैं बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान होना ये योग्यता नहीं है प्रचारक बनने के लिए। योग्यता है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति और सभी जीवात्माओं के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, उन्हें भगवान से जुड़े हुए देखने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, और स्वयं के प्रति किसी भी प्रकार के मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये योग्यताएं हैं। हालांकि हमारे पास ये योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों के आदेश है, इसलिए हम प्रयास करते हैं जो भी हमें थोड़ा बहुत सुना हुआ है भक्तों से उसको रिपीट करने का, उसको दोहराने का हम प्रयास करते हैं, जितनी हो सकती है हमारे पास नम्रता है उस भाव के साथ। लेकिन ये आदर्श है, हम सबके लिए प्रस्तुत किया गया है, इन सभी आचार्यों ने दिखाया है कि ये योग्यता हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करना है, तभी हम भगवान का नाम बड़ी भावना के साथ पुकार पाएंगे, तभी भगवान का साक्षात दर्शन हमें हो पाएगा। नहीं तो जैसे हमने कल बहुत सुंदर माधवेंद्र पुरी जी की कहानी सुनी थी, क्यों भगवान वेट कर रहे थे माधवेंद्र पुरी के लिए, क्या भगवान किसी को भी नहीं बता सकते, भगवान के पास शक्ति नहीं है किसी के भी सपने में जाके उसको बोल दे, सपनादेश सपन में आदेश दे दे कि भैया यहाँ आओ, उठाओ मुझे, मैं यहाँ पे झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ, कब से कितने दिनों से, महीनों से, सालों से मैं यहाँ पे हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी ठंडी लग रही है, इतनी बरसात हो रही है, इसमें मैं जमीन के अंदर यहाँ पे रखा गया हूँ, किसी को भी बोल सकते थे। उस जमीन के आजू बाजू हमेशा कितने लोग जलते होंगे, जाते होंगे, कितने ब्रजवासी, कितनी गैया जाती होंगी, क्या भगवान क्यों क्यों रुके थे माधवेंद्रपुरी के लिए कि कब आएंगे माधवेंद्रपुरी? जब आए तो तुरंत आ गए, आए और गोविंद कुंड के पास बैठे थे, नाम जप कर रहे थे, पुकार रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, तुरंत भगवान आ गए गोपाल के रूप में। हाँ, मतलब गोपाल के रूप में क्या, वही गोपाल जमीन में थे, वही आ गए आर्च विग्रह और आए और दूध दिए उनको, कहा कि आप भूखे हो, आपने कुछ लिया नहीं है, किसी से मांगते भी नहीं हो, आप लीजिए, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई भूखा नहीं रहता। तो भगवान आए, दर्शन दिए और फिर स्वप्न में उनको बताए कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, कितने सालों से हूँ, मुझे निकालो, मेरी स्थापना करो, मेरी सेवा करो। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। जब देखते हैं कि मेरे भक्तों के हृदय में नम्रता का भाव है, मेरे प्रति प्रेम का भाव है, तो भगवान उससे आकर्षित होते हैं। इसीलिए उस भक्त को भगवान सेवा देना चाहते हैं। तो इसीलिए वेट कर रहे थे कि माधवेंद्रपुरी कब आएंगे, कब मैं उनको अपने आप को सौंप दूंगा उनके हाथों में, भगवान वेट कर रहे थे इस प्रकार से। तो ये भगवान को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। नहीं तो भगवान हमारे नाम जप से आकर्षित नहीं होंगे, यदि हमारा नाम जप एक गर्विष्ट हृदय से बाहर निकल रहा है, भगवान वो अनसुनी कर देंगे, कान अपने दूसरे जगह लगा देंगे, वो गाय की आवाज उनको ज्यादा मधुर लगेगी या ब्रजवासियों की जो सो कॉल्ड ग्राम्य वार्ता जो है वो उनको अच्छी लगेगी, हमारा नाम जप अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। क्यों? क्योंकि हृदय में हमने गर्व को और द्वेष को, गलत गलत भावनाओं को हमने घर बना के रखा हुआ है, जगह दे रखी है, तो वहां पे भगवान नहीं आएंगे विराजमान करने के लिए। तो भक्त मतलब वो गुणों से होता है, भक्त मतलब पहनावे से नहीं होता कि उसने भक्त जैसे दिखने वाले कपड़े पहने हैं और जो भी भक्त करते हैं उस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो वो भक्त हो गए ना। भगवान ऐसे एक्सटर्नल चीजों से, बाहरी रूप से भगवान आकर्षित नहीं होते, भगवान आकर्षित होते हृदय से कि इसका हृदय कैसा है, ये अपने हृदय में कौन सी बातों को महत्व देता है, कौन सी चीजों को पूज्य मानता है, ये इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है अपने हृदय में, अपने जीवन में, तो भगवान वो देखते हैं। और जब उसका हृदय योग्य पाते हैं, भगवान बहुत खुशी से उसके हृदय में जाके निवास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जब भगवान ऐसा हृदय देखते हैं जो कोमल है, कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल है, और कैसे बनता है, ये नम्रता से बनता है। जब भक्त के हृदय नम्रता होती है तो नम्रता ये पंखुड़ियों के समान कोमल लगती है भगवान को, भगवान वहां पे विश्राम करना पसंद करते हैं, ना कि ऐसा हृदय जहाँ पे दूसरों को सम्मान देने की भावना नहीं है, बल्कि स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यक्ति भागा है और फिर दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखता है, भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखता है। तो भगवान ऐसे नाम जप से या ऐसे व्यक्ति के भक्ति से आकर्षित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। तो बहुत सुंदर ये दोनों महान भक्त है, स्वयंभू मनु और कर्दमा मुनि, जो अपने स्वयं के आचरण से हमें कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद जी कुछ बताए नहीं, लेकिन बस उनका आचरण दिखा दिया हमें कि ये देखो, ये होता है वैष्णव, ये होता है भक्त जिसके हृदय में किसी प्रकार की कटुता नहीं, किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, लेकिन हमेशा वो दूसरों को आदर देना चाहते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और दूसरों को प्रेम करना सिखाते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं हमें कि कैसे हमारे अंदर ये नम्रता का गुण होना चाहिए, इसको कुछ अंश में मैं भी
प्राप्त कर सकूं आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका? हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है, कई बार हम भक्तों के साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भक्त जो है उसके व्यवहार से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो मुझसे द्वेष करता है। तो फिर ऐसे जब हमें ऐसा लगने लगता है, फील होने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न है। जब हमारा ध्यान इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है हमें ध्यान देने के लिए अच्छी चीजें है नहीं हमारे पास। मेरे पास ध्यान देने के लिए अच्छी चीजें है नहीं, इसीलिए मेरा ध्यान बुरी चीजों की ओर जा रहा है। इसका मतलब मेरा हृदय भी बुरी चीजों से भरा हुआ है, इसीलिए बुरा हृदय कैसा, बुरी चीज की ओर जा रहा है। किसी की जैसे मक्खी होती है ना, वो कहाँ जाती है? वो गंदगी की ओर जाती है। वो थोड़ी जाएगी फूल की ओर जाके बैठेगी, कमल के फूल के अंदर कितना सुगंध होता है, कितना मकरंद होता है, उसको मैं लूंगा नहीं। वो तो गंदगी के स्टूल के ऊपर जाके बैठती है, वहां का वहां पे उसको रस मिलता है। तो इसका मतलब है हमारा हृदय मक्खी की तरह है। गंदा है हमारा खुद का हृदय, इसीलिए गंदगी की ओर आकर्षित हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं डर्ट अट्रैक्ट्स डर्ट। गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। हम घर को साफ नहीं करेंगे, एक दिन दो दिन देखेंगे बहुत गंदा होने लगता है फिर वो, लेकिन साफ रखेंगे तो थोड़ी भी गंदगी सहन नहीं होती फिर। अरे गंदगी हो गई, चलो साफ कर दो। तो इसका मतलब है कि मेरा ध्यान दूसरों की गंदगी की जाने के बजाय मेरी गंदगी की ओर देखना चाहिए मुझे। द फैक्ट दैट आई एम सीइंग अदर्स इम्प्यूरिटीज, दैट मीन्स आई हैव टू फर्स्ट सी माई इम्प्यूरिटी। पहले मुझे खुद की अंदर की गंदगी मुझे देखनी है, उसको साफ करना है, ना कि मुझे दूसरों की गंदगियों को धार देना है। बल्कि दूसरों की ओर यदि मुझे ध्यान देना है तो सबसे पहले मुझे नोटबुक में लिख के रखना होगा कि उस भक्त के अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, और उसको बार बार पढ़ के मुझे दिमाग में डालना चाहिए, ताकि जब भी मैं उस भक्त को देखूं तो उसकी अच्छा कोई तो अच्छा गुण, क्योंकि हर एक के अंदर अच्छाई होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई है ही नहीं ना, वो इतना बुरा है कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगाई मदाई जैसे व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई देखी जाती है, तो अब क्या कहे। रूप सनातन कहते हैं कि जगाई मदाई ऐसे भक्त है कि उन्होंने कभी वैष्णवों को ब्राह्मणों को कभी तकलीफ नहीं दी थी, उन्होंने अपराध नहीं किया था उनका, ये अच्छाई है उनकी। लेकिन देखिए हम कैसे हैं, हम तो मलेच्छ के जो मांस खाते हैं गाय का, उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कितने बुरे हैं। ऐसे करके सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं। तो मुझे बुराई दिख रही है मतलब मेरे अंदर बुराई है, मुझे वहां पे होमवर्क करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है कि मेरे अंदर की बुराई निकल जाए। मेरे अंदर अच्छाई आएगी तो मुझे सब में अच्छाई दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के अंदर कोई कमी ना हो, हो सकती है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी मायने नहीं रखती। क्योंकि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जब भगवान देखते हैं कि मैं दूसरों के प्रति मेरे अंदर सराहना की भावना है, अप्रिशिएशन की भावना है, तब भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो मुझे प्रयास करना चाहिए यदि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है तो, कि दूसरों के अंदर अच्छाई देखूं मैं। हरे कृष्णा। समय हो गया है, सभी भक्त प्रसाद के लिए राह देख रहे हैं, आप बाद में मुझे पर्सनली पूछ लीजिए। क्योंकि समय हो गया है ना, 9:00 चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शीला प्रभुपाद की, समवेत गौरव भक्त वृंद की। हिताय गौर प्रेमनंदे। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।